अध्याय 44। नौजवानों से एक विनती। प्रिय नौजवान मित्रों, जो कुछ आप बोते हैं वही काटेंगे। अभी आपके बोने का समय है। फसल कैसी होगी, आप क्या बो रहे हैं, प्रत्येक शब्द जो आप बोलते हैं या प्रत्येक कार्य जो आप करते हैं वह बीज है जो अच्छा या बुरा फल लावेगा। बोने वाले के हृदय में परिणाम स्वरूप खुशी या दुख होगा। जैसा बीज बोया जाएगा वैसी ही फसल होगी। परमेश्वर ने आपको बड़ी ज्योति और बड़े अवसर दिए हैं। प्रकाश मिल जाने के बाद, आपके सब खतरों को स्पष्टता से दर्शाए जाने के बाद, उत्तरदायित्व आपके ही ऊपर आ जाता है। आपके सुख और दुख का मापदंड यही है कि आप परमेश्वर के दिए हुए प्रकाश का उपयोग किस प्रकार करते हैं। आप अपने भविष्य के निर्माता स्वयं ही हैं। आपका प्रभाव दूसरों के चरित्र और मस्तिष्क पर अच्छा या बुरा अवश्य पड़ता है, और वही प्रभाव स्वर्ग की पुस्तक में अंकित किया जाता है। एक दूत सदैव आपके शब्दों और कार्यों का लेखा लेने के लिए हमेशा आपके साथ है। जब आप प्रातःकाल सोकर उठते हैं, क्या आप परमेश्वर की सहायता की आवश्यकता मालूम करते हैं, और क्या नम्रतापूर्वक हृदय से अपनी आवश्यकताओं को स्वर्गीय पिता पर प्रकट करते हैं? यदि हां, तो दूत आपकी प्रार्थना को लिखते हैं, यदि ये केवल होठों से ही न निकली हुई हों। जब आप अचानक ही कोई गलत या पूरे खतरे में पड़ने वाले हों, जिसका प्रभाव दूसरों को भी गलत रास्ते पर ले जाना है, तो ये संरक्षक दूत आपकी ओर होगा और आपको उत्तम मार्ग पर चलाएगा। आपके शब्दों को चुनेगा और कार्यों को प्रभावित करेगा। यदि आपको कोई भय ना हो और यदि आप परीक्षाओं का सामना करने की शक्ति और सहायता के लिए प्रार्थना न करें, तो आप अवश्य ही बहक जाएंगे। आपके कर्तव्यों को न करने की बात स्वर्ग पर ईश्वर की पुस्तक में लिख ली जाएगी और आप परीक्षा के दिन तोल में कम निकलेंगे। आपके चारों ओर बहुत से ऐसे हैं जिनको धार्मिक शिक्षा दी गई हो और बहुत से बुरी आदतों में पड़ने और अत्यधिक लाड़ प्यार, झूठी सच्ची प्रशंसा के कारण बिगड़ गए हों। मैं उन मनुष्यों के विषय में बात कर रही हूं जिनको मैं अच्छी तरह जानती हैं। उनका चरित्र दिखावटी और चापलूसी की बातों से ऐसा लिपटा हुआ है कि वे इस जीवन के लिए निकम्मे हो गए हैं, और यदि इस जीवन के लिए इतने निकम्मे हो गए तो उस जीवन की आशा ही कहां, जहां पवित्रता और शुद्धता और चरित्र में समानता होती है। मैंने ऐसे व्यक्तियों के लिए प्रार्थना की है तथा उनसे व्यक्तिगत रूप से मिलकर बातचीत भी की। मैंने उनके उस प्रभाव को भी देखा जो दूसरों को घमंड, कपड़ों से प्रेम तथा अनंत बातों के प्रति उदासीनता के गर्त में गिराते हैं। इस प्रकार के लोगों के लिए केवल आशा यही है कि वे अपनी चाल को सुधारें, घमंड तोड़कर नम्र बनें, अपने पापों से पश्चाताप कर ईश्वर की ओर फिरें कि परिवर्तित किए जाएं। आत्मिक बातों के विषय में रुचि पैदा कीजिए। निरंतर चौकसी और दीनता की प्रार्थना में युवकों की एकमात्र सुरक्षा है। वे अपने आप को धोखे में न रखें कि इसके बिना ही वे अच्छे मसीही रह सकते हैं। शैतान अपनी परीक्षाओं को और अपनी चालाकियों को रोशनी की आड़ में छिपाता है, जैसा उसने मसीह के साथ जंगल में किया था। वह उस समय अपनी सूरत में स्वर्गीय दूत के समान था। हमारी आत्माओं का बैरी स्वर्गीय अतिथि के समान हमारे पास आएगा और प्रेरित हमें अपनी रक्षा के लिए संयम और सावधानी रखने के लिए आगाह करता है। वे नौजवान जो लापरवाह और निश्चिंत होकर मसीही कर्तव्यों से चूकते हैं, हमेशा दुश्मन की परीक्षाओं में गिरते हैं और जयवंत नहीं होते जैसा मसीह हुआ। बहुत से लोग प्रभु की ओर दावा तो करते हैं परंतु है नहीं, क्योंकि उनके कार्य शैतान के पक्ष में हैं। किस प्रकार जानेंगे कि हम किसकी ओर हैं? हमारे हृदय का स्वामी कौन है? हमारे विचार किसके प्रति हैं? किसके विषय में बातचीत करना हम पसंद करते हैं? कौन है जिसके लिए हमारे दिल में प्रेम है तथा हम किसके लिए परिश्रम करते हैं? यदि हम प्रभु की ओर हैं, तब हमारे विचार उसी पर होंगे और उसके लिए ही होंगे। इस संसार से हमारी कोई मित्रता नहीं होगी। हमारा पूरा ध्यान उस पर और उसके लिए ही होगा। हम उसका अनुकरण करने का प्रयत्न करेंगे। उसका आत्मा हम में होगी। उसकी इच्छा पर चलकर हर बात में उसे प्रसन्न करते रहेंगे।
सच्ची शिक्षा यही है कि हम अपनी मानसिक शक्ति का प्रयोग इस प्रकार करें कि उसका अच्छा परिणाम हो। किस लिए? धर्म की ओर हमारा मन कम आकर्षित होता है, जबकि संसार की ओर बुद्धि शक्ति सभी लगती है। इसका कारण यही है कि हमारी सारी शारीरिक शक्ति का पूर्ण झुकाव उसी ओर है। हमने अपने आप को सांसारिक कार्यों में व्यस्त रखना सीखा है, अतः हमारा ध्यान उस ओर आसानी से लगता है। इसीलिए मसीहियों को धार्मिक जीवन कठिन और सांसारिक जीवन सहज लगता है। हमने अपने ध्यान को इस ओर झुकाया है। धार्मिक जीवन के लिए ईश्वर के वचन की सत्यता की ओर लगाव होना चाहिए तथा व्यावहारिक जीवन में वो दिखाई पड़े। धार्मिक विचारों का ज्ञान और भक्ति की भावनाएं पैदा करना ये शिक्षा का अंग नहीं बनाया जाता है। इसका प्रभाव और नियंत्रण हमारे पूर्ण जीवन पर होना चाहिए। ठीक कार्य करने की आदत का अभाव है। अनुकूल परिस्थितियों में कार्य करना तो सहज है, परंतु स्वाभाविक रीति से ईश्वरीय बातों पर चलना ये मस्तिष्क को चलाने वाला सिद्धांत नहीं है। पवित्र प्रेम के लिए मस्तिष्क को शिक्षित और अनुशासित बनाना चाहिए। आत्मिक बातों के प्रति प्रेम की आदत डालिए। हाँ, यदि आप सत्य के प्रेम की पहचान में बढ़ना चाहते हैं। भलाई करने की इच्छा और सच्ची पवित्रता तो ठीक है, परंतु आप यहीं ठहर जाए तो उसका कोई मूल्य नहीं रह जाता। अच्छे इरादे तो ठीक हैं, परंतु उनका कोई मूल्य नहीं यदि उन पर दृढ़तापूर्वक चलने का साहस नहीं किया जाए। बहुत से लोग मसीही होने की इच्छा और आशा रखते हुए भी नाश हो जाएंगे, क्योंकि उन्होंने कभी इसका भरसक प्रयत्न नहीं किया। वे तराजू में तोले तो गए, परंतु कम निकले। इच्छा को सही ओर चलाना चाहिए। मैं पूर्ण रीति से हूंगा। मैं पूर्ण प्रेम की लंबाई, चौड़ाई और गहराई जानूंगा। प्रभु के मधुर शब्दों को सुनिए। धन्य हैं वे जो धर्म के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वे तृप्त किए जाएंगे। मत्ती 5:6। धर्म की भूखी और प्यासी आत्माओं को संतुष्ट करने के लिए मसीह ने पर्याप्त साधन तैयार किए हैं। उच्च आत्मिक आदर्श के लिए प्रयल। प्रेम की शुद्धता आत्मा को ऊंचे आदर्श तक पहुंचाएगी, अतः ईश्वरीय बातों का ज्ञान बढ़ेगा, ताकि ये थोड़ी ही भरपूरी से संतुष्ट न हो लें। बहुत से मसीहियों को आत्मिक शक्ति का कुछ भी अनुभव नहीं, यद्यपि वे इसे प्राप्त कर सकते हैं। यदि उनके हृदय में ईश्वरीय ज्ञान प्राप्त करने की लालसा, उत्साह और आकांक्षा हो, जिस प्रकार वे सांसारिक और नष्ट होने वाली वस्तुओं के लिए रखते हैं। अधिकांश लोग जो केवल मसीही कहलाने से ही संतोष करते हैं, आत्मिक रूप से बौने रहने में संतुष्ट रहते हैं। वे ईश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करने को अपने जीवन में प्राथमिकता नहीं देते, अतः भक्ति उनके लिए एक छिपा हुआ रहस्य है जिसे वे समझ नहीं सकते। वे अपने व्यावहारिक ज्ञान से मसीह को नहीं जानते।
ऐसे स्त्री पुरुषों को जो अपनी बौने की सी दशा में संतुष्ट हैं और ईश्वरीय बातों में लाचार हैं, उन्हें स्वर्ग पर ऊंचे पर गवाही के लिए भेज दिया जाए, जहां पवित्रता अपनी पूर्ण सिद्धता में बनी रहती है। प्रत्येक आत्मा प्रेम से भरपूर, प्रत्येक चेहरा आनंद से झलकता और मधुर संगीत से मेमने की स्तुति करता है, और उन संतों के मुख पर मेमने की जो सिंहासन पर विराजमान है, अगम्य ज्योति की किरणें झलकती हैं, और तब उन्हें ज्ञात होगा कि उस अनुभव में कितना सुख और आनंद है जिसे वे ईश्वर से प्राप्त करते हैं। जितना अधिक उनमें ये अनंत आनंद का विस्तार होता है, उतना ही अधिक वे उस अगम्य महिमा के स्त्रोत्र से अवर्णनीय आशीष प्राप्त करते हैं। क्या मैं पूछ सकती हूं कि ऐसे लोग उस स्वर्गीय आनंद में सम्मिलित हो सकते और उस मधुर संगीत में भाग ले सकते और उस पवित्र महान उज्ज्वल महिमा को सह सकते जो ईश्वर और मेमने की है? अजी नहीं। उनके लिए तो इतना अधिक समय बढ़ाया गया कि वे स्वर्ग की भाषा सीख लेते और उस सड़ाहट से छुटकर जो संसार में बुरी अभिलाषाओं से होती हैं, ईश्वरी स्वभाव के सहभागी हो जाओ। दूसरा पत्रस 1:4। परंतु वे अपनी बुद्धि और सारी शक्ति को केवल अपने स्वार्थी धंधे में ही लगाते हैं।
वे ईश्वर की सेवा स्वतंत्र रूप से करने की तत्पर नहीं होते। सांसारिक इच्छाएं उनके जीवन में प्रथम स्थान रखती है, अतः वे अपनी सारी शक्ति उसी में लगा देते हैं और ईश्वर की बातों का बहुत कम विचार करते हैं। क्या ऐसों को उस अंतिम निर्णय से पहले ही नहीं बदल जाना चाहिए कि जो पवित्र है वो पवित्र बना रहे और जो अशुद्ध है वो अशुद्ध बना रहे? ऐसा समय आ रहा है। वे जिन्होंने अपने आप को आध्यात्मिक आनंद के अभ्यास से निपुण बना लिया है, वे वही हैं जो स्वर्ग को उठाए जाएंगे और स्वर्ग की देदीप्यमान महिमा और पवित्रता से चकित नहीं होंगे। आपको भले ही कला का अच्छा ज्ञान हो, विज्ञान से परिचित हो, संगीत में निपुण हो और हस्तलेख में आपका शिष्टाचार आपके साथियों की पसंद हो, परंतु इन सब का उस स्वर्ग की तैयारी से क्या संबंध? इसके द्वारा तो आप ईश्वर के न्याय के सम्मुख नहीं बच सकते। स्वर्गीय चरित्र को इस पृथ्वी पर प्राप्त करना चाहिए। धोखा न खाइए। ईश्वर ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता। केवल पवित्रता के सिवाय कोई आपको स्वर्ग के लिए तैयार नहीं कर सकता। ये केवल शुद्ध व्यावहारिक भक्ति है जो आपके चरित्र को शुद्ध और उन्नत करके ईश्वर की उपस्थिति के सामने ले जा सकती है, जो अगम्य ज्योति में निवास करता है। ये स्वर्गीय चरित्र इस पृथ्वी पर प्राप्त करना चाहिए, अन्यथा ये कभी भी प्राप्त नहीं किया जा सकता। इसलिए शीघ्र ही आरंभ कीजिए। अपने को इस धोखे में न पड़ने दीजिए कि कभी समय आएगा जब आपका प्रयत्न आज से ज्यादा आसान हो सकेगा। प्रत्येक बीतता हुआ दिन आपको ईश्वर से दूर करता जाता है। उस अनंत काल के लिए अपने आप को ऐसे उत्साह से तैयार कीजिए जैसा आपने अभी तक कभी नहीं दिखलाया। अपने आप को बाइबल से प्रेम, प्रार्थना सभाओं से प्रेम, प्रातःकाल मनन के समय से प्रेम और सबसे अधिक प्रत्येक क्षण ईश्वर की संगति से प्रेम के लिए शिक्षित कीजिए। यदि आप उस स्वर्ग की संगीत सभा में भागीदार बनना चाहते हैं तो आध्यात्मिक विचार वाले बनिए। ईश्वर के प्रेम को प्राप्त करें जब आप उसे पा सकते हैं। मेरा ध्यान उस विश्वास योग्य इब्राहिम के पीछे जाता है जो स्वर्गीय आज्ञा पाकर, जो उसने रात के दर्शन में बेर शोबा में पाई थी, इसहाक को साथ लेकर चल देता है। वो अपने सामने उस पर्वत को देखता है जिसके ऊपर ईश्वर ने उसे बलिदान चढ़ाने के लिए कहा था। इसहाक थरथराते हुए अपने करुण पिता के प्रेमी हाथों द्वारा बांध लिया गया, क्योंकि ईश्वर ने कहा था, पुत्र अपने आप को बलिदान के लिए पिता के अधीन करता है, क्योंकि उसे पिता के ऊपर पूर्ण विश्वास था। परंतु जब प्रत्येक चीज तैयार है और पिता का विश्वास और पुत्र की अधीनता की परीक्षा पूर्ण रूप से की जा चुकी थी, तब ईश्वर का दूत इब्राहिम का हाथ पकड़ लेता और कहता है, क्योंकि तूने जो मुझसे अपने पुत्र वरन अपने एकलौते पुत्र को भी नहीं रख छोड़ा, इससे मैं अब जान गया कि तू परमेश्वर का भय मानता है। उत्पत्ति 22:12।
इब्राहिम के विश्वास का कार्य हमारे ही लाभ के लिए लिखा गया। ये हमको हमारी कठिन अवस्थाओं में भी अपनी आवश्यकताओं के लिए ईश्वर पर भरोसा रखना सिखाता है। ये हमको परमेश्वर की मांगों पर भरोसा करने का पाठ सिखलाता है, भले ही वे अप्रिय व कर्कश प्रतीत हों। इससे बालकों को माता पिता तथा परमेश्वर को पूर्ण अधीनता की शिक्षा मिलती है। इब्राहिम के आज्ञा पालन से सीखते हैं कि हमारे पास कोई भी चीज इतना बहुमूल्य नहीं जिसे हम परमेश्वर को नहीं दे सकते। परमेश्वर ने अपने पुत्र को दीनता, आत्मात्याग, दरिद्रता, परिश्रम एवं निंदनीय जीवन यापन करने तथा क्रूस की यातनापूर्ण मृत्यु के लिए दे दिया। परंतु वह कोई दूत इस शुभ संदेश लाने के लिए नहीं थे कि इतना बस है, तुमको मरने की आवश्यकता नहीं। हाय मेरे प्रिय पुत्र, स्वर्गदूतों की लाखों सेनाएं दुख भरी दृष्टि से इस आशा से ठहरी थीं कि जैसा इसहाक के विषय में ईश्वर इस अंतिम घड़ी में इस शर्मनाक मृत्यु से बचावेगा। परंतु किसी भी दूत को ईश्वर के पुत्र के लिए ऐसा संदेश लाने के लिए आज्ञा नहीं हुई। न्यायालय में निंदा और कलवरी के मार्ग पर भी निंदा सहता रहा। उसका ठट्टा किया गया और उसके मुंह पर थूका गया। उसने उनके मुख से असहनीय कटु वचन और निंदा के शब्द सुने जो उससे घृणा करते थे, जब तक कि उन्होंने उसे क्रूस पर नहीं ठोक दिया और सिर झुकाकर उसने अपना प्राण न त्याग दिया। ईश्वर अपने प्रेम के परिचय का सबूत
इससे अधिक और क्या दे सकता था कि अपने पुत्र को इन सारे दुखों में से होकर जाने दे। और जैसे ईश्वर का वरदान मनुष्यों को मुफ्त है, उसका प्रेम अपार है, इसी प्रकार उसके दावे हमारे हृदय पर, धन पर, प्रेम रूपी धन पर, विश्वास और आज्ञा पालन पर भी उसी अनुपात से बेहद है। वो मनुष्य की प्रत्येक चीज चाहता है, जो कुछ भी वो दे सकता है। हमारी अधीनता भी ईश्वर के वरदान के अनुसार होनी चाहिए, वो पूर्ण हो, उनमें कुछ भी कमी न हो। हम सब ईश्वर के कर्जदार हैं, उसका हम पर दावा है, और हम बिना उसको कुछ दिए हुए, पूर्ण बलिदान किए बिना उससे छूट नहीं सकते। वो अविलंब और हर्षपूर्ण आज्ञा पालन की मांग करता है, और इससे कुछ कम वो स्वीकार भी नहीं करेगा। अभी हमारे ईश्वर के प्रेम और दया को प्राप्त करने का अच्छा अवसर है। शायद ये वर्ष बहुतों के जीवन में अंतिम वर्ष हो जो इसे पढ़ रहे हैं। क्या नौजवानों में कोई ऐसा है जो इस विनती को पढ़कर भी संसार के क्षणिक आनंद को पसंद करेंगे और उस शांति से परे रहेंगे जो मसीह अपनी इच्छा के सच्चे खोजी तथा पूरा करने वाले को देता है? संसार के भोग विलास को पसंद करेगा, तराजू में तौला गया। ईश्वर हमारा चरित्र, स्वभाव, हृदय के विचार अपने पवित्र स्थान की तराजू से तौल रहा है। अपने छुड़ाने हारे के द्वारा जो हमारे लिए क्रूस पर मरा, ताकि हमारे हृदय को अपनी ओर खींच ले। ये सुनना अत्यंत भयानक बात होगी, ऐसी भयानक गलती जो कभी फिर सुधारी नहीं जा सकती। प्रिय नवजवान मित्रों, क्या ईश्वर की पुस्तक में आपका नाम खोजना व्यर्थ ही होगा? ईश्वर ने आपके लिए कार्य नियुक्त किया है, जिसको करने से आप उसके सहकर्मी ठहरेंगे। आपके चारों ओर की आत्माओं को बचाना है। ऐसे बहुत से लोग हैं जिनको आप अपने परिश्रम से सहायता दे सकते और जिनका साहस बंधा सकते हैं। आप आत्माओं को पाप से धार्मिकता की ओर मोड़ सकते हैं। जब आपके हृदय में ईश्वर के प्रति उत्तरदायित्व की भावना है, तो आप प्रार्थना और बाट जोहने में विश्वास योग्य रहकर शैतान की परीक्षाओं पर जय पा सकते हैं। यदि आप वास्तव में मसीही हैं, तो हम संसार की नैतिक अंधकारमय दशा से बचने का प्रयत्न करेंगे तथा व्यर्थ कपड़ों के घमंड में नहीं फंसेंगे। आप वास्तव हैं तो इस संसार को नैतिक अंधकारमय दशा से बचने का प्रयत्न करेंगे तथा व्यर्थ कपड़ों के घमंड में नहीं फंसेंगे। आप उनमें से एक होंगे जो देश के वृणित कार्यों को देखकर रोते और कराहते हैं। आप शैतान की परीक्षाओं का विरोध कर आभूषणों के व्यर्थ की दिखावटी नहीं करेंगे। वो हृदय संकीर्ण है और बुद्धि क्षुद्र है, जो इन बनावटी दिखावट बातों में पड़कर अपने महान उत्तरदायित्व का तिरस्कार करते हैं।
यदि वे चाहते तो हमारे जमाने के नौजवान मसीह के सहकारी बन सकते हैं, और काम करने से उनका विश्वास मजबूत होगा और परमेश्वर के संबंध में उनके ज्ञान में वृद्धि होगी। हर एक सच्चा मनोरथ, हर एक भला कार्य जीवन की पुस्तक में दर्ज किया जाएगा। काश कि मैं नौजवानों को जगा सकती कि वे अपनी आत्मतृप्ति के लिए जीवन यापन करने के पाप को और इस जीवन की मामूली व्यर्थ बातों के सबब अपने को क्षुद्र करने के शाप को देखें और महसूस करें। यदि वे अपने विचारों को इस संसार के व्यर्थ के आकर्षण से ऊपर उठाएं और ईश्वर की महिमा को अपना लक्ष्य बनाएं, तो वो शांति जो सारी समझ से परे है उनके हृदयों की रक्षा करेगी। ईश्वर नौजवानों को उत्साही व्यक्ति बनाना चाहता है, जो हर भले कार्य के लिए तैयार और अपना उत्तरदायित्व निभाने में तत्पर हों। ईश्वर ऐसे नौजवानों को निमंत्रित करता है जिनका हृदय शुद्ध, मजबूत और निडर और संघर्ष में लड़ने के लिए तत्पर है, कि ईश्वर की महिमा हो और मानवता को आशीष मिले। यदि नौजवान बाइबल को अपने अध्ययन का विषय बनाकर अपने सृजनहार और उद्धारकर्ता का शब्द सुने, तो वे न केवल ईश्वर से शांति ही, परंतु अपने आप को उच्च विचारों में उन्नत पाएंगे। जहां कहीं भी आप जाएं, प्रकाश अपने साथ लेते जाएं, तो कि आपके उद्देश्यों में शक्ति है, न कि आप अस्थिर व्यक्ति हैं जो बुरी संगति के प्रभाव से आसानी से बहकाए जाते हैं। उन मनुष्यों के सामने जो ईश्वर का अनादर करते हैं, उनके सम्मानों का तुरंत समर्थन न कीजिए, किंतु उन्हें बुराई से बचाने का यत्न कीजिए। ऐसे मनुष्यों को जो स्वयं का विरोध करते हैं, उनके लिए प्रार्थना कीजिए
और पूरी नम्रता और आत्मा की दीनता से उन्हें समझाइए। एक आत्मा के बचाए जाने से और उसे मसीह के झंडे तले लाने से स्वर्ग में आनंद होगा और आपके मुकुट में आनंद का एक सितारा लग जाएगा। एक बची हुई आत्मा उसके ईश्वरीय प्रभाव से दूसरी आत्माओं को उद्धार के ज्ञान तक पहुंचाएगी। इस प्रकार कार्य बढ़ता जाएगा और केवल उस अंतिम न्याय के दिन ही वो संपूर्ण कार्य हो जाएगा। ईश्वर के कार्य करने में इसलिए ना हिचकिचाएं कि आप बहुत थोड़ा कार्य कर सकते हैं। थोड़ा सा कार्य भी विश्वास से कीजिए और ईश्वर आपके प्रयत्नों पर आशीष देगा। वो आपका नाम जीवन की पुस्तक में लिखकर आपको प्रभु के आनंद में संभागी होने के योग्य बनाएगा।